ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सुवसाहूणं सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाती कर्मने प्रणमन करू धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्य चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदु वळी हूँ मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौ सिद्धने य नमस्करण करिए रीते गणधरयने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञानमु य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करु साम्यने जेनाति शिव प्राप्ति मने। आचार्य श्री कुंकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं और उन पुस्तकों में से भी हमारी सातवीं पुस्तक चल रही है और हम आए पेज नंबर 54 पर। चौबन आपको मिला दक्षाबेन, सात नंबर है ना आपके पास पुस्तक। हाँ देखो हम पढ़ते हैं यहाँ, ये 172 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की, जो समय सार में भी ये गाथा है 49 नंबर की, इसको कहेंगे अलिंग ग्रहण की गाथा। अलिंग ग्रहण गाथा में क्या बताया है देखो, केवल अन्वयार्थ देखते हम, शुरुआत में है पेज नंबर 4 पर है। देखो हम गुजराती वो हरिगीत पढ़ते हैं, छे चेतना गुण गंध रूप रस शब्द व्यक्ति न जीवने वळी लिंग ग्रहण नथी अने संस्थान भाख्युन ते हने। अभी इसका जो अन्वयार्थ है ना उसका शब्दशः अर्थ दिया है कि जीव ने, हम केवल गुजराती गुजराती पढ़ेंगे, अरस अरूप अगंध अव्यक्त चेतना गुणवाड़ो अशब्द अलिंग ग्रहण एटले लिंग थी अग्राह्य, लिंग ने किसी चिन्ह के द्वारा वो समझा नहीं जाता, जाना नहीं जाता, या इंद्रिय के द्वारा वो जानता नहीं, इंद्रिय के द्वारा वो जनाया नहीं जाता, अने अनिर्दिष्ट संस्थान ने जेने कोई संस्थान कहूँ नहीं, उसका कोई आकार नहीं कहा है, अने वो असंख्यात प्रदेशीय है परंतु कोई ऐसा निश्चित आकार वाला नहीं है। अभी इसी को अमृतचंद्राचार्य ने 20 बोलों के द्वारा समझाया है, बहुत विस्तार से बात चल रही है। अभी हम आते हैं 54 नंबर पर, यानी ये क्या कहते हैं कि इंद्रिय के द्वारा आत्मा जाना नहीं जाता और केवल इंद्रियों के द्वारा ही पर को नहीं जान रहा, वो मात्र अनुमान से भी नहीं जाना जाता, मात्र अनुमान से पर को भी नहीं जाना जाता, इस तरह से बहुत सारी बातें यहाँ चली है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर अभी छठा बोल चलेगा, प्रवचन सार 172 गाथा छठो बोल। पांच बोल छे ए नास्ति थी आया, यानी ऐसा आत्मा नहीं है ये बात है, पर अस्थि से भी कुछ है कि नहीं है तो वो बताएंगे। आनाथी न जनाए, आनाथी न जनाए तो को नाथी जनाए, ये छठा बोल में आवे छे। समझाए छे कहीं? देखो जरा पहले बोल केवल पढ़ लेते, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, वो क्या पढ़े थे पेज नंबर वही 4 नंबर पर। ये नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे, लास्ट 4 लाइन है ना वहाँ से। ग्राहके ने ज्ञायक, ग्रहण शब्द ज्ञान के अर्थ में आता है, तो ग्राहक यानी ज्ञायक एवं जेने लिंगो वड़े एटले कि इंद्रियो वड़े ग्रहण एटले जाणवू थतुं नथी, यानी वो इंद्रियों के द्वारा उसका जानना नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानना उसका अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा हो रहा है। आ रीते आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय छे एवं अर्थनी प्राप्ति थाय छे, एक बात हो गई। दूसरे में ग्राह्य, पहले आत्मा को ग्राहक यानी ज्ञायक बनाया था, अभी आत्मा ज्ञेय भी तो है ना, जानने भी आता है, तो क्या वो इंद्रियों से जानने में आएगा? इंद्रियों से तो हम पुद्गल को जान रहे हैं, तो कहते आइए दरवाजा थोड़ा आगे कर देना, ठीक है। क्या कहते हैं देखो, सेकंड पॉइंट बता रहे हैं हम, ग्राह्य एवं जेनु लिंगो वड़े एटले के इंद्रियो वड़े ग्रहण थतु नथी ते अलिंग ग्रहण छे, यानी वो आत्मा जो जानने में आता है वो किसी इंद्रियों के द्वारा वो नहीं जानने में आता है, ये बात बता रहे। आ रीते आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्षनो विषय नथी एवं अर्थनी प्राप्ति थाय छे। इंद्रिय प्रत्यक्ष एक होता है स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष व्यवहार में जिसको कहेंगे, हमने प्रत्यक्ष सुना, हमने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा, उसका नाम क्या है मालूम है आपको? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कहने में आता है इंद्रिय ज्ञान को। तो ऐसा आत्मा इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जाना जाए ऐसी बात नहीं है। तीसरा पॉइंट 5 नंबर पेज पर, जेम धुमाड़ा द्वारा अग्निनु ग्रहण थाय छे। देखो जिसने अग्नि और धुएं को इकट्ठा देखा है कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि होती है, तो उसने कालांतर से क्या देखा, किसी पर्वत पर उसने धुआं देखा, तो उसने उस धुएं के चिन्ह के द्वारा अग्नि का अनुमान किया, उसको कहेंगे अनुमान लगाया। अग्नि तो नहीं दिखी पर धुआं दिखाई दिया, तो धुआं दिखाए तो उसने क्या अनुमान लगाया, अरे वहाँ अग्नि होनी चाहिए। यही कहते हैं जेम धुमाड़ा द्वारा अग्निनु ग्रहण थाय छे तेम लिंग द्वारा, लिंग ने इंद्रिय गम्य कोई ऐसा चिन्ह हो आत्मा का और उसके द्वारा आत्मा जानने में आए, ऐसा नहीं। तो कहते इंद्रिय गम्य द्वारा यानी इंद्रियों थी जनावा योग्य चिन्ह द्वारा जेनु ग्रहण थतु नथी यानी जानू थतु नथी ते अलिंग ग्रहण छे। उसके क्या नक्की हुआ, आ रीते आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमानो विषय नथी, यानी इंद्रियों के द्वारा हमने कोई चिन्ह जाना और उसके द्वारा हमने अनुमान से आत्मा को जाना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी तक जो कोशिश कर रहे इंद्रियों के द्वारा ही जानते हैं ना, ये बहिर्मुख ही हमारी इंद्रिया है, इंद्रिया अंदर का कुछ नहीं जानती है। आँखों के पीछे क्या है दिखता है आपको, अंदर क्या चल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा है ना, ये तो बदबू आती बाहर की आती है, अंदर से इतना मैला पड़ा है अंदर, उसके कुछ नहीं आती है। तो इंद्रिया ये बहिर्मुख है, वो अपने अपने विषय को जानती है, इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता, ये बात यहाँ कह रहे हैं। ऐसा कोई आत्मा का चिन्ह नहीं है कि जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाए और उसके द्वारा हम आत्मा को जाने, ये तीसरा पॉइंट हुआ। अब चौथे पॉइंट पर क्या है, दूसरे भी इस आत्मा को जानेंगे ना, तो कहते बीजा वड़े मात्र लिंग द्वारा जेनु ग्रहण थतु नथी ते अलिंग ग्रहण छे। उससे क्या सिद्ध हुआ, आ रीते आत्मा अनुमेय मात्र नथी, जैसे ज्ञान का ज्ञेय कहते ना, इसे अनुमान से जो जानते हैं, जिसको जानते हैं उसको कहेंगे अनुमेय, यानी जैसे धुएं से अग्नि को जाना, तो अग्नि ये अनुमेय हुआ, धुआं दिखा और हमें अग्नि का अनुमान लगाया और अग्नि को जाना, कैसे जाना वो हमारा अनुमेय है। ऐसे हम दूसरे के लिए अनुमेय है क्या, ऐसा है तो यह क्या कहते हैं, आ रीते आत्मा अनुमेय मात्र नथी एवं अर्थनी प्राप्ति थाई छे। यानी कोई दूसरे हमें अनुमान से केवल जान लेवे ऐसे भी बात नहीं हो सकती। अब पांचवा पॉइंट, जेने लिंगथी ज परनु ग्रहण थतु नथी ते अलिंग ग्रहण छे। लिंग ने कोई चिन्ह समझना, आ रीते आत्मा अनुमाता मात्र नथी एवं अर्थनी प्राप्ति थाई छे। अनुमाता नथी ने केवल वो अनुमान से जानता है ऐसा नहीं, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानता है, स्वसंवेदन से अपने आप को जानता है, वो बात बताएंगे अभी। तो ये निगेटिव सारे नास्तिक से कथन, ये नहीं वो नहीं वो नहीं बताया। अभी अस्थि से क्या है हम ये यहाँ बोल पढ़ेंगे, फिर प्रवचन पढ़ेंगे। देखो छः नंबर पर, लिंग द्वारा नहीं पर स्वभाव वड़े जेने ग्रहण थाय छे ते अलिंग ग्रहण छे। यानी किसी चिन्ह के द्वारा नहीं परंतु स्वभाव के द्वारा ही जिसका जानना होता है उसको हम अलिंग ग्रहण कहते हैं। आ रीते आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता छे एवं अर्थनी प्राप्ति थाय छे। यानी वो प्रत्यक्ष ज्ञाता है, इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं, वो प्रत्यक्ष अपने आप को जानता है। ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव जो है अपना ज्ञानमय है ना, आत्मा कैसा है तो ज्ञानमय है, तो ज्ञान ज्ञान के द्वारा ही अपने आप को जान लेता है, उसको कहेंगे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। वेदन यानी अनुभव, किसका, अपना है, और प्रत्यक्ष अनुभव होता है ज्ञान के द्वारा अपना आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से होता है, वहाँ कोई इंद्रिया वहाँ काम नहीं करती। अभी यही बात यह विस्तार से खोलेंगे तो हमारे और ख्याल में आ जाएंगे। यानी अभी तक नास्ति से कथन हो रहा था, अब अस्थि से क्या बता रहे हैं, देखो सेकंड लाइन 54 पेज पर। तो अनाथिनो जाना है, अनाथिनो जाना है तो को नाथी जाना है, ये छठा बोलमा आवे छे। समझाय छे काय, भगवान आत्मा ज्ञाता ज्ञाता छे ए प्रत्यक्ष छे, जेने ज्ञातापणू छे जेने प्रत्यक्ष जाणवू थाय छे। अने आत्मा को जानने का कार्य कैसे होता है तो प्रत्यक्ष जानना जाता है। ज्ञाता कहने से वो ज्ञानमय है ना, जानना जानना वो स्वयं ज्ञायक है, किसी अन्य के कारण उसको जाना जाता है वो या वो दूसरे को जानता ऐसा नहीं, जानना उसका स्वभाव है। जेने एटले देखो स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है, क्यों जान रहा है, उसका स्वभाव है जानने का। जेने एटले ज्ञाता ने पोताना स्वभाव थी स्वभाव वड़े प्रत्यक्ष जानवू थाय छे, यानी उसका स्वभाव ही है कि अपने स्वभाव से ही उसका प्रत्यक्ष जानना हो जाता है। आवी वात छे, देव गुरु अने शास्त्रना निमित्त थी नहीं, इंद्रियो थी नहीं, मन थी नहीं, विकल्प थी नहीं। अने आत्मा आत्मा को जो जानता है वो कुदेवादी से तो नहीं जानता है, तो सच्चे देव गुरु शास्त्र के कारण तो जानता है कि नहीं अपने आप को, तक दे नहीं, इंद्रियों से भी नहीं जाना जाता, मन से भी नहीं, विकल्प से भी नहीं, केवल हमने कल्पना की ऐसा है ऐसा है और हमने जान लिया तो ऐसा भी नहीं है। हाँ पर्याय ना आश्रय थी पर नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञाता छे ने झीणी बात बहु, यानी सूक्ष्म बात है, इसके लिए थोड़ा अभ्यास से वो ख्याल में आ सकती है। पहला इंद्रिय ना बोलमा जेने हतु ने, जेने इंद्रियमां हतु, जेने इंद्रियो वड़े जाणवू थतु नथी एने अहीं नाख्यो। आ तो अंदर मेळ कई रीते छे, आ तो अंदर, हाँ जेने भगवान आत्मा ज्ञाता छे तेने स्वभाव वड़े जेने ग्रहण थाय छे एनो स्वभाव शुद्ध छे तो एना शुद्ध परिणमन वड़े तेनु ज्ञान थाय छे। क्या कहना चाहते हैं, आत्मा का स्वभाव कैसा है तो शुद्ध है, स्वभाव शुद्ध है तो शुद्ध पर्याय के द्वारा वो जानने में आता है। अहीं तो कहे छे के व्यवहारथी थाय ने निमित्तथी थाय ने देवगुरुनी भक्ति करता करता आत्मा जणाय एम नथी। आत्मा को जानना है तो कैसे जानेंगे, तो डायरेक्ट ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जानेंगे। तो लोग क्या मानते हैं, व्यवहारते होता है आत्मा का अनुभव, निमित्त से होता है, देवगुरु शास्त्र से होता है, उनकी भक्ति करते करते होगा, कोई कहते व्रत करते करते हो जाएगा, ऐसे व्रत करो पहले प्रतिमा अंगीकार करो फिर और फिर आगे के व्रत लो तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसा उपदेश भी देते हैं एक दूसरे को। तो कहते ऐसा है ही नहीं, परनु लक्ष्य छे त्यां सुधी परना लक्ष्य ते जना एवो नथी। देखो कितनी महत्व की बात बताई, क्या कहा, ये सारा जो शास्त्र का भी ज्ञान है वो कैसा है, तो परलक्ष्य ज्ञान है, लक्ष्य पर का है, भले भगवान की वाणी भी क्यों ना हो, दिव्य ध्वनि भी क्यों ना हो, उसके लक्ष्य से आत्मा का अनुभव नहीं होगा, उसके निमित्त से यहाँ ज्ञान की पर्याय में वो पहले में पहले हम परलक्षी ज्ञान में ये निर्णय करते हैं कि आत्मा कैसा है क्या है, और जब स्वसन्मुख अपना उपयोग लगाते हैं तब आत्मा अपने ज्ञान से ही ज्ञान को जानना हो जाता है, उसको कहते हैं स्वसंवेदन ज्ञान। वो सहज ही होता है, सहज है, स्वभाव सहज है ना, तो वो पर्याय भी सहज होती है। देखो ये जिसको हम कहते हैं शुभ अशुभ राग, आप करते हैं तो होता है ना, वो भी सहज होते हैं, हमें क्या लगता है, नहीं शुभ भाव तो हम सोच समझ कर करते, अरे अशुभ भाव तो आता है, हम नहीं चाहते ये मान्यता ऐसा, हाँ लगता है, क्योंकि उसके शुभ के कर्ता बनना चाहते हैं, ये हम सोच समझ कर करते हैं ना, उसका कर्ता बनना चाहते, जो अशुभ आता है उसका कर्ता नहीं बनना चाहते, कर्ता बनना हो तो दोनों का बनो ना, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, बस बिल्कुल राग का कर्तापना वो अपने को मान के रखा है। अशुभ भाव आना कर्तव्य तो बुद्धि नहीं है, देखो देखो शुभ या अशुभ आते हैं, मुनियों के भी आते हैं, उनके कहाँ कर्ता बुद्धि है, शुभ भाव या अशुभ भाव आना वो कर्ता बुद्धि नहीं है, कर्ता बुद्धि ने मैं उसका करता हूँ ये उल्टी मान्यता, वो मिथ्या दृष्टि की है। सम्यक दृष्टि को राग होगा, राग आएगा कि नहीं आएगा, भगवान की भक्ति का भी, अरे युद्ध का भी उसको परिणाम होगा ना, राजा है तो उसको युद्ध का भी परिणाम होगा, किसी ने आक्रमण किया तो उसका तो प्रतिकार करेगा कि नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, बच्चे पर कुछ संकट आता है तो उसका निवारण करेगा कि नहीं करेगा, या रोग आता है तो वो रोग के लिए कुछ दवा वो भी करेगा, तो ये राग आना ये कर्ता बुद्धि नहीं है, ये राग का मैं कंट्रोलर हूँ ये मान्यता वो कर्ता बुद्धि है। अरे ये तो मुख्य बात है, बुद्धि का अर्थ होता है मान्यता, कैसी मान्यता, उल्टी मान्यता, पहले में कैसी थी, अहम बुद्धि, यानी शरीर मैं हूँ ये हुई अहम बुद्धि, यह मैं हूँ ऐसी खोटी मान्यता, फिर ममत्व बुद्धि, ये शरीर या ये बच्चे मेरे हैं, पैसा मेरा है, घर मेरा है, क्या, देखो कहना बात अलग है, लौकिक में तो हम कहेंगे ना, कोई पूछेंगे आपके कितने बच्चे तो आप बताएंगे, आपका नाम क्या है तो आप बताएंगे, नाम बताएंगे, कहाँ रहते हो, ये मेरा घर है ऐसा कहेंगे, ये मेरे सास ससुर जी है, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो कहना ये मिथ्या बुद्धि नहीं कहलाती, ये मान्यता मैं जीव द्रव्य हूँ, ऐसा न सोचकर हम मनुष्य मैं हूँ, ये मैं हर्षिता हूँ, फिर ये मेरी बेटी है, ये मेरे पति है, मेरे सास है, ये मेरे ससुर है, ये बातें आती है, ये मनुष्य मैं हूँ ये मानकर आप बोलते हो, बोलना कोई बात गलत नहीं है, पर मैं किस में मान्यता रखनी है, मैं जीव तत्व, तो ये जीव के कौन से होते हैं, माँ बाप और क्या क्या होते हैं, शरीर भी नहीं है, तो जीव तत्व जब कहेंगे सात तत्व में से मैं जीव तत्व हूँ, तो आश्रव में शुभ अशुभ भी आ गए सारे, वो भी पर तत्व है, वो ज्ञान से वो भिन्न है, पर है, फिर भी इन सबको ये मेरे है ऐसा मानना, ये हो ये ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि मैं इनका करता हूँ, देखो ये घर ये सारा मैंने खड़ा कर दिया, इतना मैंने पैसा कमाया, ये क्या हुआ, कर्तृत्व बुद्धि, और भोक्तृत्व बुद्धि इसको भोगने के परिणाम है, वो तो उसके ज्ञान के ज्ञेय है, परंतु मानता क्या है, मैं इनको भोगता हूँ लगता है, और उसमें सुख मिलता है, ये मान्यता आगे। देखो देखो इसलिए नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ज्ञान को ज्ञान रूप से पहले स्वीकार करना है, और राग और ज्ञान का भेद करना है, वो बारंबार उस पर प्रहार चाहिए, क्योंकि मिथ्या मान्यता अनादि से चली आ रही है, क्योंकि जितने नए नए देह धारण करता है, देह मैं हूँ, देह मैं हूँ, देह मैं हूँ, ये तो बुद्धि एकदम जिसको कहेंगे उसको पक्की हो रही है। हाँ हाँ, तो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो उसके लिए अभ्यास चाहिए, बिल्कुल, तत्व का पहले में पहले उसके पारिभाषिक शब्दों का सही ज्ञान होना चाहिए, और बारंबार उसको हम कहेंगे हैमरिंग चाहिए अपने आप को ही, क्योंकि जो ये अनादि की मिथ्या बुद्धि पड़ी है, अब देह मैं हूँ किसको सिखाना नहीं पड़ता है, पर ये मैं जीव जुदा हूँ देह से ये सिखाना पड़ता है, तो ये अपने आप को ही सिखाना है ना पहले तो।
आपने जब कर्तृत्व बुद्धि की बात दुबई में ली थी,
हाँ,
वहाँ क्या हुआ वो जरा बताओ तो, कर्तृत्व बुद्धि अड़ जाए
क्या क्या?
आपने बताया कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखनी है,
हाँ,
तो वहाँ पर सिसोदिया के बेटे ने क्या किया?
हाँ ये तो पर का कुछ नहीं करता वगैरह सुना था ना, तो एक यंगस्टर कोई आया था यहाँ पर, तो उसके भाई के लड़के ने कहा किसी ने तो जो बॉटल आती है ना दवा की उसमें वो पत्रे का ढक्कन आता है, तो ढक्कन इतने छोटे बच्चे ने इसे मुंह में डाला, तो कहते अभी उसको निकालना था ना, नहीं नहीं पर अभी मुझ में कर नहीं सकता, तो करके ऐसा खड़ा हो गया। अरे उसको निकालने के भाव भी आएंगे, उसको दौड़ेगा भी करेगा भी, फिर भी ये जो होने योग्य कार्य वो उससे नहीं हो रहा है, वो जीव का तो उस समय भी जानना हो रहा है कि जहाँ ऐसे उसकी क्रिया हुई ऐसे उसको भाव आया, परंतु तो ये नहीं करना, यानी कर्तृत्व बुद्धि मान्यता हटाने के बदले वो वहाँ पर भी कर्ता बुद्धि कायम है उसकी, मैं नहीं करता ना अभी मैं नहीं करूँगा करके ऐसे खड़ा रहना, ये मूर्खता ही है। कर्ता बुद्धि कायम है, कायम है, कर्ता बुद्धि कायम है। जो दुरो सिखाते ना भाई रोटी नहीं बनाती, हाँ तो नहीं मैं कल नहीं बनाऊंगी, फिर देखो कैसा खाता खाते हैं, यानी मैं बना सकती हूँ अगर नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी नहीं, कर्ता बुद्धि कायम है। ये सब जगह लगाना, जो निमित्त से कार्य नहीं होता तो या तो निमित्त को हटाना ही चाहते, हमको चाहिए नहीं निमित्त, हाँ हटा नहीं सकता, परंतु मान्यता में उसको हटाने की कोशिश चलती है उसको। देखो पाप कर्म का उदय नहीं चाहते हैं क्या, पुण्य कर्म का उदय चाहते हैं, चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं, यानी वो पाप कर्म बंधा था ना उसका उदय हुआ है, तो बंधा उसका उदय है, पुण्य कर्म का उदय चाहते हैं, यानी पुण्य कर्म का बंध चाहते हो, बंध तत्व संबंधी ये विपरीत मान्यता है। ये सात तत्व बिल्कुल सही रूप से उसको समझना चाहिए, तो ये आप कहते ना भेद ज्ञान बिल्कुल ऐसा भाषित होगा जैसे हाथ में रखे हो के समान। ये सात तत्व का स्वरूप समझना चाहिए और उसके बारे में क्या विपरीत मान्यता ही जीव की हो रही है उस पर बिल्कुल अभ्यास पूर्वक उसको समझना चाहिए, और फिर जब समझेंगे तो बारंबार उसके विचार हो जाएगा। यहाँ क्या कहते, देखो हमने नीचे से पाँचवीं लाइन पढ़ी थी 54 पेज पर, परनू लक्ष्य छे त्या सुधी परना लक्ष्य ते जणाय एवो नथी। क्या कहते हैं, पर का लक्षण किसका, भगवान का लक्ष्य है, भगवान की वाणी का लक्ष्य है, शास्त्र का लक्ष्य है, गुरु का लक्ष्य है, तो उसके लक्ष्य से वो जाना जाएगा आत्मा, आत्मा को जानना है तो कितना दान देंगे तो जानेंगे, कितना उपवास करेंगे तो जानेंगे, ऐसा जब कहते ना तो जो कुछ कर रहे हैं ना दान भी दे रहे हैं या भगवान का नित्य अभिषेक पूजन करे तो वो छोड़ना चाहता है, यानी मान्यता जो है वो नहीं छूटती,
वहाँ भी कर्तृत्व बुद्धि है,
कर्तृत्व बुद्धि है ना, इससे नहीं होता ना अभी छोड़ देंगे, यानी छोड़ देंगे तो क्या होगा, वैसे तो मिथ्यात्व में है ही, मिथ्यात्व नाम का बड़ा अशुभ पड़ा ही था, तो चलेगा स्वच्छंद हो जाएगा। देखो उसका सही अर्थ नहीं लेते, जहाँ मान्यता पर चोट करनी है तो वहाँ क्रिया में से ही छोड़ देना चाहता है, ये बहुत बड़ी भूल है। देखो पुण्य को हेय बताया, हेय श्रद्धा में लेना है, ये हेय गेय और उपादेय ये श्रद्धा के विषय, श्रद्धा में उसको कैसे श्रद्धा करनी है, तो कहते वो हेय तत्व है, छोड़ने लायक है, छोड़ने लायक है कब समझेगा, कब नक्की करना है, मिथ्यात्व अवस्था में ही नक्की करना है पहले में पहले, तो कब छूटेगा बोलो, अरे नहीं छूटेगा, छठे गुणस्थान में वाले को नहीं है, अरे दसवें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ है, तो हमारे छोड़ने से थोड़ी छूटेगा, परंतु छोड़ने लायक है ये कब नक्की किया हमने, मिथ्यात्व अवस्था में नक्की करे तो जाके चौथा गुणस्थान प्रकट होगा, शुभ राग आने योग्य आएंगे, अरे चौथे वाले को तो अशुभ भी आएगा। परंतु ये दोनों ही राग है वो बंध के कारण है, वो सब छोड़कर मुझे स्वरूप में स्थिर होना योग्य है ऐसा नक्की करना है केवल। जब होगा तो बात अलग बात है। बेटी घर में पैदा हुई तो क्या नक्की किया, बोलो, पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है, नक्की किया कि नहीं? परंतु पराया धन है क्या तो छोड़ दिया नहीं, फिर उसको अच्छी तरह से उसकी सिफारिश करेंगे, उसको एजुकेशन देंगे जो अपने पैर पर खड़ी हो जाए, इस तरह से उसको काबिल बनाएंगे, फिर अच्छा कोई वर देखकर फिर उसको विदा करेंगे। पर नक्की कब किया था? अरे वो जन्मे तभी। ऐसे ही पुण्य है ये इतना नक्की करना है आपको, पुण्य कहाँ छोड़ने को बताया। उल्टा तो उच्च प्रकार का पुण्य आता रहेगा, पहले तो ऑर्डिनरी पुण्य आता था, अभी शास्त्र स्वाध्याय होगा, उसका तत्व चिंतन होगा, वो हाईएस्ट क्वालिटी का पुण्य हो रहा है अभी तो। प्रश्न पूछते हैं, गुरु ने उपदेश तो आवेज ने जोर कहा है, निमित्त पर होता है, बिना देशना के देशना लब्धि नहीं होगी, और सर्वथा ऐसा निसर्ग जो सम्यक तो होता ही नहीं, भले इस भव में देशना नहीं मिली हो तो पूर्व की देशना तो होती है, तीन भव तीसरे भव तक चलती है। तो इसीलिए प्रश्न क्या पूछा, गुरु ने उपदेश तो आवेज ने जो लगा है ना, समाधान ए उपदेश छे ते निमित्त छे, अने तेनु जे ज्ञान थयुं ए कई निमित्त वाणी थी थयुं नथी। क्या कहते हैं, ये ज्ञानी की देशना होती है, परंतु उससे जो ज्ञान हुआ वो वाणी से हुआ क्या? तो कहते नहीं, निमित्त से यहाँ कार्य नहीं होता। निमित्त होता जरूर है पर कार्य तो उपादान से ही होता है, ही लगाना वहाँ, यहाँ ही कहाँ लगाया, उपदेश तो आवेज ने, ऐसा भी पूछते ना, जब तक नहीं समय दर्शन होता तो शुभ तो करना चाहिए ना, तो चाहिए वाला जोर कहाँ आता है, शुभ राग पर। हम कहते शुद्ध के लिए शुभ करना चाहिए, तो शुभ के लिए अशुभ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि उसमें से जाएगा। देखो ये उपदेश छे ते निमित्त छे, अने तेनु जे ज्ञान थयुं ए कई निमित्त वाणी थी थयुं नथी। अभी जो अलिंग ग्रहण की जो गाथा है उसका जो अर्थ हम अभी पहले तो पढ़ा था, कुछ नहीं समझते थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो गुरुदेव ने समझा इसलिए समझे कि नहीं? ये अपनी ज्ञान की योग्यता से समझ रहे, वहाँ ये निमित्त है और ऐसा निमित्त होता है, समझ में आता है तो उनके प्रति और अहोभाव आए बिना नहीं रहता कि गुरुदेव की इतने क्यों जय जयकार करते हम। अरे उन्होंने ये सारा सरल करके समझाया, उन्होंने समझाया ऐसा कहेंगे हम, समझे तो अपने ज्ञान के परे ऐसे समझे, क्योंकि समझ हम ही समझे, और विरोध करने वाले विरोध क्यों करने बैठे, वो भी समझ जाते ना, ख्याल में आई ना बात। तो जो समझे वो अपनी योग्यता से समझे, और जो नहीं समझे विरोध करने वाले वो अपनी उसकी होनहार कहो उनकी अपनी योग्यता से नहीं समझे। तो कहते उपदेश है निमित्त छे, यानी उपदेश है वो निमित्त है, और उसका जो ज्ञान होता है वो कुछ निमित्त से वाणी से ज्ञान नहीं होता, ते ज्ञान थी पन ते जानवामां आवे आवो नथी। क्या कहते हैं, वह ज्ञान कौन सा, गुरु ने शिष्य को समझाया, शिष्य ने अपने ज्ञान से समझा, परंतु फिर भी उस ज्ञान से आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। हमने इतना स्वाध्याय किया इससे तो आएगा कि नहीं आत्मा अनुभव में, तो ये परलक्षी ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, ये परलक्षी ज्ञान है, इससे आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ये बात कह रहे यहाँ पर। तो क्या छोड़ दे, छोड़ने की कहाँ बात है, ये नक्की करना है कि आत्मा का अनुभव कैसे होगा। स्वभाव बड़े जानवामां आवे छे एम कीधुं ने, इन्हें स्वभाव से ही जाना जाएगा, तो ये स्वभाव से कैसे जाना जाता है, तो कहते वो तो ख्याल में आएगा जरा अभ्यास करेंगे तो। एम कीधुं ने सांभळीने जे ज्ञान थयुं ए स्वभाव नथी, क्या कहा, ये ज्ञायकपना ये स्वभाव है, और जो सुनकर जो ज्ञान हुआ वो तो इंद्रिय ज्ञान है ना, वो स्वभाव भाव नहीं है। आवी बात पूछे, आहा हा आखिरी बात बापा, तो कहते ये कठिन लगती है लोगों को, प्रभु तो कौन छो, ते तो ज्ञाता छे, अपने को प्रभु कहकर पुकार रहे भगवान आत्मा जो है ना, तो कहते हम अपने को ही नक्की करें कि मैं कौन हूँ। गुरुदेव तो कहते तू कौन छो, ते तो ज्ञाता छे, તો જ્ઞાતા કેમ જણાય? જ્ઞાતા આત્માને, જેને એટલે આત્માને જ્ઞાતા કેમ જણાય? એને આત્મા સ્વયં જ્ઞાતા હૈ, તો ઉસકો યે જ્ઞાતા કૈસે જાના જાયેગા, વો ઇસકો કૈસે જાનેગા અપને આપકો? તો કહેતે લિંગ દ્વારા નહીં, એ તો પહેલે ઇસસે નહીં ઉસસે નહીં અનુમાન સે નહીં વો પહેલે બતા દીએ, પહેલે પાંચ બોલ મેં, પાંચમાં લિંગ દ્વારા નહીં એમ હતું ને, એ છેલ્લો શબ્દ હતો, એટલે એના દ્વારા નહીં એટલું નકારતી કહ્યું. હવે છઠ્ઠે નંબર કે બોલ મેં અસ્થિ સે બતા રહે, પણ સ્વભાવ વડે. સ્વભાવ કૈસા હૈ તો રાગ રહિત, જેનો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ છે. દેખો રાગ હોને પર ભી રાગ રહિત સ્વભાવ કો હમકો પહેચાનને કી જો રહસ્ય હૈ ઉસકો સમજના ચાહીએ. જૈસે સ્ફટિક હૈ, સ્ફટિક કૈસા ઉસકા નિર્મલ હૈ, ટ્રાન્સપરન્ટ જિસકો હમ કહેંગે, પરંતુ ઉસકે બાજુ મેં કોઈ એક કાલી ચીજ રખ દી તો ક્યા હોતા હૈ, કાલી જાય પૂરે સ્ફટિક, પૂરા સ્ફટિક ઉસરૂપ અપને કો, એને ઉસકે પર્યાય જલ, નીલી કોઈ ચીજ રખ દો તો વો નીલા બન જાતા હૈ. તો જબ વો નીલા હૈ તભી ઉસકે વો ટ્રાન્સપરન્ટ નિર્મલતા કા ખ્યાલ કરના ચાહીએ, ક્યોંકિ વહાં તો કૈસા હમ ભેદ કરેંગે, યે જો નીલાપન હૈ કાલાપન હૈ વો તો સંયોગી ચીજ કે નિમિત્ત સે હુઆ હૈ, ઉસને નહીં કિયા, ઉસને કિયા હોતા તો પથ્થર ભી વૈસા હો જાતા, માજો કે ઓર્ડિનરી કાંચ ભી વૈસે હોતી, પણ સ્ફટિક હી હુઆ, ક્યો? સ્ફટિક કા સ્વભાવ હૈ કે વો નિમિત્ત કે હાજરી મેં ઉસરૂપ ઉસકે અનુરૂપ વો સ્વયં પ્રવર્તતા હૈ. નિમિત્ત કો અનુકૂળ કહેતે હૈ, ઓર યે જો સ્ફટિક પરિણામ હૈ ઉસકો હમ કહેં ઉસ અનુરૂપ ઉસને પરિણમન કિયા. એસે જીવ ભી કર્મ કે ઉદય કે અનુરૂપ સ્વયં ઉસકે વશ હોકર રાગાદિ કર રહા હૈ. જૈસે સ્ફટિક કા વો કલરફુલ હોના ઉસકા સ્વભાવ નહીં હૈ, કાયમી સ્વભાવ કૈસે ટ્રાન્સપરન્ટ હૈ, ઓર વો જબ રંગીન દિખ રહા હૈ ઉસી સમય ઉસકે ટ્રાન્સપરન્ટ હમને બુદ્ધિ મેં લેના હૈ ઉસકો. એસા હી અભી રાગાદિ રૂપ પરિણમન હૈ, ઉસ સમય ભી વો જ્ઞાનમય અપના હૈ ઉસકા ખ્યાલ કરના હૈ, તો જ્ઞાન કો ઓર ઉસકો ભિન્ન અપને જ્ઞાનમય ભાષિત હોગા. એસે અંદર કુછ અલગ સે દિખેગા નહીં. ક્યા કહેતે હૈ, રાગ રહિત જનો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવ છે કૈસા નક્કી કરેંગે હમ? સિદ્ધ ભગવાન પૂર્ણ સ્વભાવ રૂપ સે પ્રણમિત હુએ, જૈસા સ્વભાવ એ વિશે ઉનકી પર્યાય હો ગઈ, યે નક્કી હુઆ ના? સ્વભાવ મેં થા તો પર્યાય મેં પ્રગટ હુઆ, જૈસા સ્વભાવ વૈસી પૂર્ણ પૂર્ણ ઉનકી પર્યાય વૈસી હુઈ, યાને હમ ભી જીવ દ્રવ્ય તો હમારા સ્વભાવ ભી એસા હૈ. તો યહાં ક્યા કહેતે, રાગ રહિત જનો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ છે. અભી હમ તો રાગ મોહ રાગ દ્વેષ હૈ, ઓર ઉસકે હોતે હુએ ભી હમે શુદ્ધ સ્વભાવ કો ખ્યાલ મેં લેના હૈ, બુદ્ધિ મેં લેના હૈ, નિર્ણય કરના હૈ ઉસકા. એ ચૈતન્ય સ્વભાવની શુદ્ધ પરિણતિ દ્વારા ઓર ઉસકા લક્ષ્ય કરને સે એ શુદ્ધ પરિણતિ પ્રકટ હોગી, તો હમ કહેંગે શુદ્ધ પરિણતિ કે દ્વારા હમને ઉસકો જાના. પહેલે કહાં શુદ્ધ પરિણતિ થી? આપ કહેંગે શુદ્ધ પરિણતિ કહાં સે લાના? અરે સ્વસન્મુખતા સે વો અપને આપ પ્રકટ હોગી, ઉસકે લીએ પહેલે નિર્ણય મેં લેના હૈ કે મેં એસા હું હે. તો કહેતે, રાગ રહિત જેનો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ છે, એ ચૈતન્ય સ્વભાવની શુદ્ધ પરિણતિ દ્વારા. દેખો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ તો અનાદિ સે હૈ, તો ક્યો નહીં અનુભવ મેં આ રહા હૈ? તો કહેતે સ્વભાવની શુદ્ધ પરિણતિ દ્વારા, ઉસકી પરિણતિ શુદ્ધ હો જાવે તબ ઉસકા અનુભવ હોગા. સ્વભાવ વડે જ જેને એટલે જ્ઞાતાને, સ્વભાવ વડે જ વડે એને દ્વારા જ, સ્વભાવ કે દ્વારા હિ જેને જ્ઞાન જનાય છે. આત્મા ક્યાં હૈ તો કહેતે જ્ઞાતા હૈ, ઓર ઉસકો સ્વભાવ કે દ્વારા હિ અપના જ્ઞાન જો હૈ વો અનુભવ મેં આતા હૈ, સ્વ સંવેદન જ્ઞાન, એને અપને આપ કા અનુભવ કરના ઉસકા સ્વભાવ હિ હૈ, તો ઉસકો લક્ષ્ય કરો તો વો સ્વભાવ કે દ્વારા હિ વો જાનને મેં આ જાતા હૈ. આવી વાતો છે, આ તો મૂળ રકમની વાત છે. અત્યારે તો બહુ ફેરફાર થઈ ગયો છે. ક્યાં ફેરફાર હુઆ? એસા કરો વૈસા કરો, ઉપવાસ કરો, વ્રત કરો, દાન કરો, એસા વરઘોડા નિકાલના, જુલુસ નિકાલના, ઇસી કા ઉપદેશ હૈ. એટલે કહેતે બહુ ફેરફાર થઈ ગયો છે. માણસને એવું લાગે આ શું પણ કહે છે બાપુ, માર્ગ આ છે ભાઈ. શ્વેતાંબરમાં તો એક સાધુ એમ કહે છે કે ભગવાનનું નિમિત્ત થઈને પછી ઉપાદાન જાગ, પણ નિમિત્ત ઉપર લક્ષ્ય છે ત્યાં સુધી ઉપાદાન જાગે જ નહીં. ક્યાં કહેતે હૈ, निमित्त ऊपर लक्षण ही निमित्त से कार्य होता है ये मान्यता कायम है, और मुझे अभी निमित्त मिलेगा तो मेरा कार्य होगा, कहाँ कहाँ देख रहे, स्वभाव को देख रहे कि निमित्त की तरफ। चाहे तो तृण लोकना नाथ तीर्थंकर समो शरणमां विराजमान हो तेना लक्ष्य पौन राख थाय। क्या कह रहे, साक्षात भगवान को देखकर। हम तो मंदिर में जाते हैं भगवान के सामने खड़े होते तो उनकी वितराग मुद्रा देखकर भी हमको कितना अच्छा लगता है ना, वहाँ तो साक्षात भगवान, तो उनको देखने से आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा ये प्रश्न है, नहीं होगा। यानी कि वहाँ पर भी राग है तो ये राग थोड़ा हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लोग लगता है ना शुभ राग तो जरा हेल्पफुल होगा, तो भगवान को देखकर हमें शुभ राग आया तो थोड़ा हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा हमको आत्मा के अनुभव के लिए, तो कहते नहीं। भगवान आत्मा ज्ञाता जेने स्वभाव वड़े जेने ज्ञाता ने ज्ञान थाई छे। क्या कहेंगे, भगवान आत्मा कैसा है तो ज्ञाता है, और उसको स्वभाव के द्वारा ही ज्ञान होता है। आत्मा को ज्ञाता कहा, जानने वाला, तो उसको ज्ञान कैसे क्यों होता है, तो कहते स्वभाव के द्वारा ही उसको ज्ञान होता है। बहु अलौकिक वातु छे, आ तो मूल सिद्धांत छे। हवे आ लोको बधा वांदा उठावे छे के क्यांक व्यवहार साधन कयुं छे ने घणे ठेकाने कयुं छे, उनको भी पता है ये व्यवहार को भी कहीं कहीं साधन तरीके कहने में आया है, कहना बात अलग है, वो औपचारिक कथन ऐसे आते हैं। जैसे आचार्य देवनी टीका में कहूँ छे ए तो स्वभाव वड़े साधन थयुं छे, त्यारे निमित्त ने साधन नो आरोप दईने एनाथी थयुं एम कहेवामां आवे छे। देखो भगवान के सामने भी कहते हैं ना, भगवान आपके कारण ये मुझे मार्ग मिला है या आपने मुझे समय दर्शन दिला दिया, ऐसा भी कहेंगे। ये तो कहने की पद्धति है, यहाँ बताए ना निमित्त ने साधन नो आरोप दईने, एक्चुअली साधन क्या है, स्वभाव ही साधन है, पर ये किस पर आरोप दिया, भगवान पर, गुरु पर। जैसे मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, उसको पूछते हैं ये किसके कारण तूने कैसा किया, अभ्यास क्या किया, तो माँ का नाम लेगा, अपने गुरु का नाम लेगा, इन्होंने हमको पढ़ाई, इन्होंने मार्ग दिया। तो गुरु ने तो सभी स्टूडेंट्स को बराबर पढ़ाया था ना, कि एक को ही पढ़ाया तो आरोप किस पर आया, गुरु पर। क्या उन्होंने जाकर पत्र पेपर लिखा था कि माँ ने जाकर पेपर लिखा है, तो माँ ने बारंबार मुझे हेल्प किया, यानी मदद की, कैसे, अरे जाग रहे अभ्यास कर रहे जो कुछ है, तो कहते ये मेरे माँ के कारण मेरा पहला नंबर आया। वैसा ही है, देखो स्वभाव वड़े साधन थयुं छे, स्वभाव के द्वारा ही वो साधन है, स्वभाव ही साधन है, फिर भी साधन का आरोप किस पर आता है, तो निमित्त पर। कौन से निमित्त पर, अभी सच्चे देव है, गुरु है, शास्त्र है, उस पर आरोप आता है। आरोप दईने एनाथी थयुं एम कहेवामां आवे छे, देखो कहने की बात अलग है और मान्यता में रखने की बात अलग है। हवे शुं थाय पण प्रभु, आ कहीं वादे पार पड़े एवुं नथी। देखो ये तो वाद विवाद का है ही नहीं बात, ये मार्ग। वाद में क्या होगा, उसने हम ऐसा कहेंगे, दूसरा कुछ विरोधी बात करेंगे, तो उससे हमारा कल्याण है ना उसका कल्याण है। हमें जो चीज़ मिली है उस पर बारंबार ध्यान कर देके अपना कल्याण कैसे होगा ये सोचने की बात है। ओहो हो भगवान जेनो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव छे, एटले ने स्वभाव वड़े जेने ज्ञातापणू जानवामां आवे छे। देखो अभी साधन तो नक्की हुआ, क्या हुआ सुशीला बेन, क्या साधन है, स्वभाव कहाँ से लाना, अरे अनादि से है, यानी उसकी तो कोई चिंता नहीं ना। अभी ये साधन कहाँ से जुटा है, हम सब अपने पास है और उसके द्वारा ज्ञातापना है, यही कह रहे कि जेनो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव छे, एटले ने स्वभाव वड़े जेने ज्ञातापणू जानवामां आवे छे, एने स्वभाव के द्वारा ही वो ज्ञातापना जो है उसका जानना जो चल रहा है वो उसी के द्वारा हो रहा है। पहले तो ये कहियो तू ने जेने लिंगो वड़े एटले के इंद्रियो वड़े ग्रहण एटले जानवू थतुं नथी, पहले बोल में बताया था, यानी ने आत्मा को इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं हो रहा है, यानी आत्मा जो जान रहा है वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जान रहा है, यानी पर को भी जानना हो रहा है ना उसका, वो ज्ञाता स्वभाव के कारण उसका जानना हो रहा है, ये पहलो बोल तो। त्यारे हवे कहे छे जेने भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव स्वरूप ने સ્વભાવ વડે તેને તેના સ્વભાવનું જ્ઞાન થાય છે. ક્યા કહેતે આત્મા કા સ્વભાવ કૈસા હૈ જ્ઞાતા દૃષ્ટા હૈ, ઓર સ્વભાવ કે દ્વારા હી ઉસકો સ્વભાવ કા જ્ઞાન હોતા હૈ. યાને જ્ઞાન કો હી જાનના હૈ તો ઓર દૂસરા કોઈ જ્ઞાન લાના પડેગા. જ્ઞાન કા સ્વભાવ હી જ્ઞાતા દૃષ્ટા હૈ, જ્ઞાન કા સ્વભાવ હી જાનના હૈ. તો અપને કો જાનને કે લિયે ઓર ઉસકો કિસકી આવશ્યકતા હૈ? કુછ ભી નહીં, ક્યોંકિ સ્વયં જ્ઞાનમય હૈ. તો જ્ઞાન હી જ્ઞાન કો જાનેગા. જ્ઞાતાનું જ્ઞાન સ્વભાવ વડે થાય છે, જ્ઞાતાનું જ્ઞાન સ્વભાવ વડે થાય છે. એને જ્ઞાતા કા જો જ્ઞાન હૈ વો સ્વભાવ કે દ્વારા હોતા હૈ. આવી વાત છે, મૂળ રકમની વાત છે. અરે આવી વાત સાંભળવા મળે નહીં તે ક્યાં જાય, શું કરે? અરે 84ના અવતાર. અને એ વાત સુનને કો મિલના ભી મહાપુણ્ય કે ઉદય સે હોતા હૈ. ગુરુદેવ હંમેશા કહેતે ભાગ્યશાળી ના કાને આ વાત પડે. કેવલ કાન પર પડને સે કુછ નહીં હોગા, ઉસકો બરાબર સમજના ચાહીએ. ઉસકે હા ક્યા અપેક્ષા હૈ, ઉસકા અર્થ ક્યા હૈ, વો બરાબર નક્કી હોગા. જૈસે આપને કહેગા કર્તૃત્વ બુદ્ધિ, હા કેવલ વર્ડ સુને હમને ઉસકા અર્થ સમજા, પરંતુ અપને કો જબ તક ભાવ નહીં ભાષિત હોતા હૈ તબ તક વો સુનના સુનના નહીં કહેલાયેગા. અરે પૂરા ચૈતન્ય ચમત્કાર હૈ, કહી બાહ્ય કિસી કી આવશ્યકતા નહીં. હમે તો બહાર ચકાચોન દેખતે હૈ તો હા હા હોતા હૈ ને, અપની મહિમા કભી નહીં આતી. જબ કોઈ એસી ચીજ દેખકર હા હા લગતા હૈ ને તબ એસા સોચના, એ હોને મેં કરને મેં માન લેતે ને. કોઈ બડા ભી ભોપાલ મેં હમને દેખા, વો બડા મંદિર બના રહે ને વહાં પર, આપને દેખા હોગા, વો બહોત હાઈટ એરિયા ભી મુજે માલુમ નહીં. એક તો લાલ મંદિર મેં જાતે થે દર્શન કે લીએ, ઓર ફિર દૂસરા એક વહાં મંદિર બન રહા હૈ પુરાણા, વો ખુદવા કર ફિર નયે 3 મંજિલ કા બહોત બડા બહોત વિશાલ મંદિર બને. અભી ભી ઉસકી વો નકશીકામ વગેરે દેખતે હૈ તો અચરજ લગતા હૈ. વો તો ખાલી ધ્યાન કા બના હૈ, ઉપર ઓર મંદિર ઓર ઉપર બનેગા. ઉસકે ફોટો દેખેંગે ભી તો અચરજ લગેગા. તો અબ એસા વિચાર આતા હૈ કે ઇનકો બનાને મેં કિતને મજૂર અભી કામ કર રહે, કિતના જોર જબરદસ્ત કામ ચલ રહા હૈ, બડી બડી લિફ્ટ સારે ક્રેન વગેરે લગી હૈ. તો હમે જાનને મેં કિતની મજૂર કિતના ટાઈમ લગા, ઉનકો બનાને મેં ઇતને ઇતને મજૂર કામ કર રહે, હમે જાનને મેં ક્યા તકલીફ હુઈ. એ તો જ્ઞાતા સ્વભાવ હૈ હમકો હરા, પરંતુ ઉસકી મહત્તા આતી હૈ, અપની મહત્તા તભી નહીં આતી. જાનને વાલા તો મેં હું ઉસકો, ઓર બિના મહેનત કા જાન રહા હું ક્યું. ભગવાન ત્રણ લોકના નાથ, દેવ ગુરુ અને શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા પણ રાગ છે. દેખો ક્યા કહા, વો શ્રદ્ધા ને ક્યા હૈ, વો રાગ હૈ ઉનકે પ્રતિ. પરને લક્ષે નહીં પણ પરની શ્રદ્ધા થઈ તે રાગ છે. રાગ વડે જેને જ્ઞાતાનું જ્ઞાન થતું નથી. ક્યા કહા, અરે બાલ બચ્ચોં કા રાગ છોડો, ભગવાન કે પ્રતિ જો રાગ હૈ, ગુરુ કે પ્રતિ જો રાગ હૈ, આદર બુદ્ધિ હૈ, ઉનકે પ્રતિ જો વિનય ભાવ હૈ, ઉસકે કારણ જ્ઞાતા કા જ્ઞાન હોગા કે નહીં હોગા, એ નક્કી કરના હૈ. સામાન્ય જ્ઞાયક જ્ઞાતા સ્વભાવ, તેની સ્વભાવ નામ શુદ્ધતા. સ્વભાવ કોઈ શુદ્ધતા કહા, શુદ્ધ પરિણતિ દ્વારા જેને જ્ઞાતાનું જ્ઞાન થાય છે. દેખો સ્વભાવ કોઈ શુદ્ધ કહા, જ્ઞાતા ઉસકા સ્વભાવ હૈ, હે ને. અબ કહેતે કે જ્ઞાતા કા જ્ઞાન કૈસે હોગા, તો કહેતે શુદ્ધ પરિણતિ સે હોગા. આવી વાત છે, મુદ્દાની ગાથા છે ભાઈ. બાકી બધી વાતો ગમે એટલી કરે, બધી થોથા છે. થોથા છે ને ઉસકી બાકી સબ બેકાર કી બાતે હૈ, યુઝલેસ. હા પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ જિનેશ્વર દેવનું આ ફરમાન છે, એ ઉનકી આજ્ઞા હૈ. આજ્ઞા ને ઇનકો ઉપદેશ હૈ. દેખો હમ ગુરુ કી આજ્ઞા કિસકો કહેંગે? લોક ક્યા પૂછતે, હમ ગુરુ કે પાસ જાકર આજ્ઞા માંગતે, ક્યા માંગતે? અભી હમકો યાત્રા મેં જાના હૈ, જાઉં કે નહીં? ઇસકે સાથ શાદી કરની હૈ તો કરું કે નહીં? વો આજ્ઞા નહીં હોતી. હા વો આજ્ઞા નહીં હોતી, પણ એસે માનતે હૈ ને લોક, ઉનકી આજ્ઞા વિના કુછ નહીં કરના. યે મેં પુસ્તક સ્વાધ્યાય કે લિયે લઉં કે નહીં લઉં, એ સબ એસી ચલતી બાતે. और उनकी आज्ञा में रहना, वो कहेंगे नहीं करना तो रख देते हैं। तो कहते हैं उनकी आज्ञा ने उनका उपदेश, क्या आज्ञा है? अरे तू मेरे पास भी नहीं आया, तू अपने आत्मा का अनुभव करो, ये उनकी आज्ञा है। यानी कोई हमको ऑर्डर नहीं दे रहे, ये उपदेश दे रहे। परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देवनू आ फरमान छे, ए वात संतो जगत सामे जाहिर करे छे। हा हा, दिगंबर संतो श्वेतांबर तो डगले ने पगले राग थी मंदता थी क्षोभशमनु समय दर्शन ज्ञान चारित्र थाय एम लखे। उनके ग्रंथों में बात लिखी है राग की मंदता से। अरे तो केवल ज्ञान भी होता है, कहते हैं ना वो क्या क्या उनकी स्टोरी आती है ना मरु देवी की, हुआ वो हाथी के अहदे पे, और कोई वो हाथी ने पग ऊपर किया और उसको केवल ज्ञान, क्या क्या बातें आती है उनकी पता नहीं, ऐसे सुनी हुई है। भाई आ फेर छे बापू, आ तो सनातन जैन तत्व वीतरागे जोयेला सर्वज्ञ स्वभाव थी जोयेला तत्व छे। क्या कहते, पूर्ण वीतरागी जो है और जो सर्वज्ञ हुए, अरिहंत भगवान की बात है, तो उन्होंने जो जाने हुए तत्व है और उसको उन्होंने बताया है। कहे छे कि इस सर्वज्ञ स्वभाव जे छे एनी पर्यायमा तेना स्वभाव वड़े तेनू ज्ञातानु ज्ञान थाय। देखो सर्वज्ञ स्वभाव है तो ज्ञान स्वभाव है कि सर्वज्ञ स्वभाव है? हाँ देखो दोनों एक क्यों हुआ, क्योंकि जो जिसका स्वभाव है उसमें कोई लिमिट नहीं रहती। आपको याद है 5 पॉइंट? हाँ बोलो। पहले स्वयं सिद्ध, फिर अनादि अनंत, हाँ फिर परिपूर्ण होता है, असीम होता है, असीम यानी अमर्यादित नो लिमिट, और असहाय यानी कोई उसको पर की सहाय की अपेक्षा नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर की अपेक्षा तो है ही नहीं, और अमर्यादित है। अमर्यादित है तो ज्ञान, तो ज्ञान स्वभाव है, तो कैसा है स्वभाव? तो अमर्यादित है, तो किसको किसको जानेंगे? स्व को के पर को, स्व को भी और पर को भी। पर में एक को जानना कि चार को जानना कि सबको, जो है वो सब कुछ जाने ऐसा स्वभाव ही है। तो सामने वाले को जाना कि दूरवर्ती को भी जानेंगे? सबको जानेंगे, अभी वर्तमान का जानेंगे कि भूत भविष्य को भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं। तो वही सब सर्वज्ञता हुई ना, तो सर्वज्ञ हमारा स्वभाव है। अभी हमारे वर्तमान की कुछ ना कुछ जानने की पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही है, यानी हमें ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है मान लेते। कोई चीज़ आपके लिए इतना डिफिकल्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है ये किसको समझा? यानी ज्ञान की पर्याय अपने प्रकट लक्षण है, वो तो कहाँ से हुई? स्वभाव से हुई ना, स्वभाव जानने का है। अभी पर्याय की तरफ मत देखो, पर्याय हीन ज्ञान रूप से है, परंतु जो कुछ ज्ञान निकला है वो स्वभाव में से निकला है, तो हमारा स्वभाव तो परिपूर्ण है। पर्याय हमारी अधूरी है अभी, पर अधूरी भी ज्ञान की पर्याय है ना, तो कहाँ से निकली? स्वभाव से, तो स्वभाव परिपूर्ण ही होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो स्वभाव को हमको ख्याल में लेना है। देखो अभी है 5 मिनट, देखो सर्वज्ञ स्वभाव जे छे एनी पर्यायमां तेना स्वभाव वड़े तेनु ज्ञातानु ज्ञान थाय छे। स्वभाव वड़े होता है ज्ञान, यानी उसका स्वभाव रूप जो परिणति है उसके द्वारा ज्ञाता का ज्ञान होता है। तो स्वभाव के लक्ष्य से स्वभाव की परिणति होगी। हम लक्ष्य तो पर का कर रहे हैं और स्वभाव की परिणति चाहते हैं, वो कैसे होगी? बाकी बधी बातू छे। हाँ हाँ भाई, ये एम कहे छे के आवुं सांभळवा मळतुं नथी, वात एवी छे भगवान शुं कही। हाँ हाँ, त्रण लोकना नाथनो पोकार आ छे। अने जिनेन्द्र भगवान ने तीर्थंकरोने ये बात बताई है, प्रभु स्वभाव वड़े जेने ज्ञातानुं ज्ञान थाय छे, एने स्वभाव के द्वारा ही ज्ञाता का ज्ञान होता है, एने आत्मा का अनुभव होता है। दया दान ने व्रत भक्तिना परिणाम थी तो बंध थाय छे। क्यों? ये शुभ हो या अशुभ हो, राग से तो बंध ही होगा, बंध से मुक्ति नहीं होगी। जब सम्यक दर्शन हुआ है, वीतरागता की शुरुआत हुई है चौथे गुणस्थान से, तो वहाँ वीतरागता तो चल ही रही है परिणति में, अभी राग भी विद्यमान है, अनंतानुबंधी नहीं रहा। परंतु अभी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संज वाला नहीं, चौथे गुणस्थान वाला है, तो तीन कषाय चौकड़ी का उसमें है अभी विद्यमान, तो उतना उसको राग भी है परंतु उससे बंद है। ज्ञानी भी क्यों ना हो, मुनिराज भी क्यों ना हो, वहाँ तो संज्वलन है, बाकी संज्वलन कषाय है तो उससे बंद भी है उतनी मात्रा में। यही कहते दया दाने व्रत भक्ति ना परिणाम थी तो बंद थाई छे, अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा कैसा है तो अबंध स्वरूपी है, ये अबंध स्वभाव बड़े करीने जना है वो छे। अबंध स्वभाव के द्वारा इन्हें क्या, वो अबंध के लक्ष्य से जो परिणति उत्पन्न होगी जिसको कहेंगे स्वभाव परिणति, स्वभाव परिणति के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव होगा। अभी बात छे समझाए छे काय, लिंग द्वारा नहीं, लिंग यानी कोई चिन्ह, कोई इंद्रियगम्य बात, निमित्त द्वारा नहीं, राग द्वारा नहीं, इंद्रिय द्वारा नहीं, आहा हा, व्यवहार रत्नत्रयना विकल्प द्वारा नहीं, लिंग द्वारा मां आ बधु आव्यू, एटले लिंग द्वारा नहीं, लिंग द्वारा इतना कहने से ये सब आ गया, अरे लिंग द्वारा मैं इन्वर्टेड में डालू उसको, लिंग द्वारा इतना ही कहे ना तो उसमें सब आ गया, क्या क्या है, निमित्त भी आया, राग भी आया, इंद्रिय भी आया, व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प, ये सब उसमें ले लेना। प्रभु तारी मोटोपनो पार नहीं, तू रागे जनाए एवो तू नहीं, यानी राग के द्वारा तू स्वयं को जानेगा ऐसा तू है ही नहीं है, ये कह रहे। मोटा ने मळवा जाऊ हो तो केटली सभ्यता जोईए, आहा हा, तो भगवान त्रणलोकनो नाथ ज्ञाता एने अंतर निर्मल शुद्ध स्वभाव वितरागी परिणति द्वारा जेने ज्ञातानु ज्ञान थाय छे, एने अपना जो निर्मल शुद्ध स्वभाव है वितरागी परिणति के द्वारा उसको ज्ञाता के ज्ञान हो जाता है। स्वभाव वड़े एटले वितरागी पर्याय द्वारा, देखो सर्व के स्वभाव कहो, स्वभाव कहो, ज्ञान स्वभाव कहो, वितरागी पर्याय वो भी स्वभाव कहो, स्वभाव ही कैसा है, सर्वज्ञता वितरागता उसके स्वभाव में है, तभी तो पर्याय में परिपूर्ण प्रकट हो जाती। जेने स्वभाव वड़े एटले के वितरागी पर्याय वड़े, वड़े ने द्वारा ये स्वभाव के द्वारा वितरागी पर्याय के द्वारा जिसको ज्ञाता का ज्ञान होता है, आवी वात छे ते अलिंग ग्रहण छे, उसको अलिंग ग्रहण कहा। आ रीते आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता छे, एवो अर्थ अलिंग ग्रहण माथी निकले छे। पहले तो अलिंग, लिंग के द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा होता है, तो कि स्वभाव द्वारा ही ज्ञाता ज्ञान में आ जाता है। भगवान कुनकुंदाचार्य एम कहूं कि आत्मा अलिंग ग्रहण छे, लिंग थी जाणवामां आवे एवो नथी, आत्मा कोई अलिंग ग्रहण कह दिया तो एनो अर्थ एवो थयो के मन थी नहीं, वाणी थी नहीं, देह थी नहीं, राग थी नहीं, पर्याय ने लक्ष्य पण द्रव्य जाना एवो नथी। क्या कहा, द्रव्य का जानना जो अनुभव होता है वो पर्याय में होता है, पण पर्याय के लक्ष्य से नहीं होता है, स्वभाव के लक्ष्य से होगा, स्वभाव के लक्ष्य से वो पर्याय ऐसी उत्पन्न होगी जिसको हम स्वभाव परिणति कहेंगे। आहा हा, एनो स्वभाव जे शुद्ध चैतन्य मूर्ति, एवी जे पर्याय क्षोभम ज्ञान जे अनादिनु छे एनाथी पण जणाय एवो नथी। आहा हा, अहीं क्यारे जाए, अहीं जाए त्यारे एने समय दर्शन थाय, यानी जो स्वभाव सन्मुख होता है वो तब उसको समय दर्शन हो जाता है। धर्मनी पहली सीढ़ी, धर्मनु पहलू पगतियों। आहा हा, स्वभाव वड़े जेने ज्ञान थाय छे, इन्हें स्वभाव के द्वारा ही उसका जानना हो रहा है, ज्ञान उसको स्वभाव के द्वारा ही हो रहा है। ज्ञाता द्रव्य ने स्वभाव वड़े जेने ज्ञान थाय छे, आहा हा, थोड़ा शब्दों गहन भाव, संतोना शब्दों छे, दिगंबर संतो वितरागी मुनि छे, जेने आनंदना उभरा आवे छे, उभरा समझते, दूध को कैसे उभरा आता है ना, अंदर से ऐसे उफान आता है, वैसे आनंद अंदर से उपलता है। अतीन्द्रिय आनंदना दरिया में जेम पानी ने भरती आवे एम धर्मात्मा मुनि ने अतीन्द्रिय स्वभाव वड़े जाणवामां आव्यो, तेथी तेनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंदनी भरती आवे छे, आनंदनू छोड़ू उठे छे, आनंदनी छोड़ू उठे छे। मुनि छे ने समय दृष्टि આનંદ છે પણ એ અલ્પ છે, અને તો ઉગ્ર અતિન્દ્રિય આનંદની ધારા વહે છે. પણ તે પણ કહે છે કે અમે અતિન્દ્રિય આનંદની ધારાથી જે જાણવામાં આવ્યો પ્રભુ, એટલેથી અમને સંતોષ નથી. કે પરિપૂર્ણ વિતરાગતા કી ઉનકો હે ને, અમને તો પૂર્ણ અતિન્દ્રિય આનંદથી જાણે એ અમારે જોઈએ. કે જો સ્વભાવ હે એ પરિપૂર્ણ ચાહીએ. બેનમાં આવે છે ને પાતળી ધારા, એમાં એ વાત છે. હા હા હા, ઘડામાંથી જેમાં પાતળી ધાર આવતી હોય એમ ભગવાન આનંદનો ભરેલો ઘટ ઘડો છે, એમાંથી અંતર લક્ષ્ય કરતા એને ઉસકે અંદર લક્ષ્ય કરને સે સ્વભાવ વડે તેમાં જતા. એને સ્વભાવ ક્યાં હે? જ્ઞાતા સ્વભાવ હે. તો જ્ઞાતા સ્વભાવ કે દ્વારા એ અંતરંગ મેં લીન હોને અનંત આનંદની ધારા પર્યાયમાં આવે. એ આનંદ કી ધારા પર્યાય મેં બહેતી હે એ વડે તે જણાય એવો છે. એને વો અતિન્દ્રિય આનંદ કી પર્યાય કે દ્વારા હિ વો જાનને મેં આતા. આકરું કામ છે ભાઈ, એકલા વાડા બાંધીને બેસે અને લોકોને રાજી રાખવા. ક્યાં કહેતે એને અપના અપના પક્ષ, અપના અપના કોઈ ક્યાં કહેતે મત પંથ પંથ બના કર વાળા ઉસકો કહેતે. ભાઈ આમ વ્યવહારથી પણ થાય હો, એને તો કહેતે લોક ઉપદેશ ક્યાં કહેતે, વ્યવહાર સે ભી હોતા હે નિશ્ચય સે ભી હોતા હે. ભગવાનનો સ્યાદવાદ માર્ગ છે. સ્યાદવાદ કિસકો કહેંગે? અનેકાંત કહેંગે, ઉસકો અનેકાંત નામ દેંગે. ઇસસે ભી હોતા હે ઉસસે ભી હોતા હે, વો અનેકાંત નહીં હોતા. હા, એકાંતે સ્વભાવથી જ થાય અને વ્યવહારથી ન થાય તે એકાંત છે. અસ્થિ નાસ્તિ દોનો હો જાયગી ના તભી તો હોગા. કહેતે નહીં, ઇસસે ભી હોગા, થોડા વ્યવહાર સે ભી હોગા, નિશ્ચય સે ભી હોગા. અરે પ્રભુ, એ સમ્યક એકાંત જ છે જો લગાયા. સમ્યક એકાંત જ છે, નિશ્ચય નહીં, સ્વભાવથી જણાય તે સમ્યક એકાંત નહીં છે. નયનો વિષય એકાંત સ્વભાવ છે. હવે અહીં રૂકેંગે. ચાવાણી કે જ્ઞાન તે સૂઝે લો કાલો, સોવાણી મસ્તકનમ સદા દેત હોલો. સુશીલા ભાઈ.